अपने 2 दिन से बात चल रही है स्वभाव को सुधारने की। महाराष्ट्र ने एक बार कहा था, कई बार कहा, एक बार याद है कि हम लोग पारमार्थिक बात को समझने में चेष्टा करते हैं, परंतु व्यवहार हमारा कितना बिगड़ता है इधर हम ध्यान नहीं देते। परमात्मा की लंबी चौड़ी बात करेंगे, संसार नाशवान है, खूब अच्छे ढंग से समझेंगे बोलेंगे, परंतु व्यवहार के समय में हम लोग चूक जाते हैं। महाराज जी ने कहा कि देखो, परमार्थ तो हमारा बना बनाया है, हमारा बिगड़ा है तो केवल व्यवहार बिगड़ा है। परमात्मा नित्य है, वो तो वैसे ही नित्य है। संसार बदलता है, ये तो बदलता ही है। परमार्थ में ये दो ही बातें हैं खास, परंतु व्यवहार हमारा बड़ा नीचे की तरफ जा रहा है। हम लोग अपने जीवन में धन को बहुत महत्व देने लगे हैं। महाराज जी दो बात बोलते थे, एक धन को और एक भोग को। जिसमें धन को तो हमने बहुत ज्यादा आदर दे दिया, ये धन हमारे जीवन का साध्य नहीं है, ये जीवन यापन का एक सम्मानजनक साधन हो सकता है। किसी से मांगना न पड़े, और रोटी है, कपड़ा है, मकान है, ये जो हमारे शरीर की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसको हम पूर्ति कर लें बस। धन का इतना ही महत्व है, लेकिन धन को हम बहुत बड़ी संख्या में जुटा करके, पैदा करके बहुत बड़ा सुख ले लेंगे, ये केवल हमारा भ्रम है और कुछ नहीं है। ये धन हमारे साथ नहीं जाएगा, और धन को खर्च करने की जो आदत है, ये हमारे आगे तक साथ जाएगी। यदि हमने यहां रुपए पैसे को अच्छे काम में खर्च किया, तो आगे भी हमारे पास जो सामग्री होगी, समय मिलेगा, साधन मिलेगा, उसको अच्छे ही काम में लगाने का हमारा भाव काम आएगा। बहुत ही ज्यादा आज तो धन के पीछे पड़े, जाओ वहां ये एक ही एक चर्चा, धन चला जाए तो बड़ा भारी नुकसान मानते, बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शास्त्रों ने कहा है कि सा हानि तन महत छिद्रम साचांद जड़ मूढ़ता। सबसे बड़ी हानि क्या है कि हम मानव जीवन में भगवान को भूल रहे हैं, ये सबसे बड़ा नुकसान है हमारे जीवन का। धन के नुकसान को हमने मान लिया, नुकसान नुकसान नहीं है। धन के चले जाने से कोई हमारे पर आफत आ जाएगी, ऐसी बात नहीं है, पर जाओ वहां पर यही ये बात है, जहां जाओ वहीं पर यही बात है। कहाँ जाए अब आदमी, कहाँ जाए, किसके पास समझे, कहाँ जाए। समाज में बैठते हैं तो यही बात की साहब, वो आदमी बहुत बड़ा आदमी है क्योंकि पैसा है, कहीं जाओ। हमारे कथा वार्ता होती है, इसमें भी अच्छी कथा कौन सी जिसमें एक तो खूब आदमी आए और खूब भेंट पूजा आए, वो कथा बड़ी अच्छी मानी जाती है। सब जगह ये एक ही एक बोलबाला हो गया। अब बताओ सत्संग में जावे, कथा में जावे, अच्छी बात अध्यात्म के उपदेश की बात सुनने के लिए जावे, वहां भी यदि यही बात होगी तो ये तो बात बार बार जमेगी कि रुपए बिना तो काम नहीं चलता है। ये बात हम लोग इतने वर्षों से सुनते हैं पर मन से ये निकलती थोड़ा ही कि रुपए के बिना तो काम नहीं चलेगा, ये तो बात बैठी हुई है, ये अंदर मैल है हमारे विचारों में, अंतःकरण में बड़ा चिपका हुआ मैल है। संसार के बिना हमारा काम नहीं चलेगा, ये बहुत बड़ी भारी गंदगी हमने अपने मन में पैदा कर ली। जो व्यक्ति धन पैदा करेगा और अच्छे काम में लगाएगा उसके मन में ये बात नहीं आएगी। सेठ जी से किसी ने कहा कि सेठ जी आप सत्संग का खूब प्रचार चाहते हो तो आप एक काम करो कि लाल कपड़ा करके साधु हो जाओ, लोग आपकी बातों को संत समझ करके खूब ज्यादा मात्रा में सुनेंगे और आपको सत्संग के प्रचार करने का अच्छा मौका मिलेगा। तो सेठ जी ने कहा कि देखो मैंने गीता से जो लाभ लिया है वो इसी बात से लिया है कि घर गृहस्थ में रहते हुए मनुष्य का कल्याण हो सकता है, कर्मयोग के द्वारा सुगमता से कल्याण हो सकता है, ये बात मुझे गीता में खूब अच्छे ढंग से मनन करने पर मिली है। और यदि मैं रुपया पैसा छोड़ दूंगा, साधु बन जाऊंगा, तो लोगों पर असर और ढंग का पड़ेगा कि कर्मयोग में कल्याण होता नहीं है। सेठ जी कहो भले ही, इन्होंने अपना व्यापार क्यों छोड़ा, इन्होंने अपना गृहस्थ क्यों छोड़ा, लोगों के जचेगी नहीं। और मैं ये बात विशेषता से जचाना चाहता हूं कि घर गृहस्थ में रहो, निर्लेप होकर के रहो, वस्तु का सदुपयोग करो, परिवार की सेवा में लगाओ और अपना मत मानो। वो आपका धन है, वो दिव्य चीज हो जाएगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, क्योंकि ममता से उसमें मलिनता आती है। पुराने जमाने में सेठ साहूकार कभी मारवाड़ में अपने गांव में जाते थे तो सारे गांव में खुशी होती थी कि सेठ साहब आए हैं, ये गांव में अच्छे काम को जो है बना करके और अच्छा बनाएंगे, दीन दुखियों में लगाएंगे, शिक्षा में लगाएंगे, औषध आदि में लगाएंगे, तो सारा गांव उनकी कोठी पर आता था और बड़ा सम्मान करता था। धीरे 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 ये भावना लुप्त होती गई और पैसे का महत्व बढ़ता गया और उसका हम सदुपयोग नहीं करने लगे, भोगों में लगने लगे तो उन्हीं गांव में रहने वालों को उन्हीं सेठ साहूकारों से ईर्ष्या होने लगी। उनके क्या है, पैसा कमाते हैं, करते हैं, गवर्नमेंट की चोरी करते हैं, ये करते हैं, न जाने कितनी कितनी बात बनाते हैं। क्यों? क्योंकि वो पैसे का अच्छा प्रभाव पड़ना चाहिए, वो नहीं पड़ा। तो जीवन में पैसा महत्व का नहीं है। सेठ जी की पैसे के ऊपर और दृष्टि थी, भाई जी की और दृष्टि थी, महाराज जी की और दृष्टि थी। इन महात्माओं की दृष्टि को थोड़ा हम लोग समझें तो सही, कम से कम। भाई जी के पास में लोक उपकार के लिए करोड़ों रुपए आते थे। किसी ने भी भाई जी पर ये भ्रम नहीं किया कि भाई जी के पास पैसा जाता है वो अच्छे काम में लगता भी है कि नहीं, हम कहां दे रहे हैं। भाई जी के घर में खर्चे की तंगी रहती थी, करोड़ों रुपया लोगों का आता था, पर भाई जी सेवा में लगा देते। महाराज जी बताते थे कि एक बार भाई जी कोट पहने हुए थे, वो कोट फट गया, तो महाराज जी ने बड़े मजाक में कहा कि भाई जी वो थारो कोट फाट गयो, नयो बनाओ। तो भाई जी ने बहुत हंसते हुए और अच्छे लहजे में कहा, ए पीसा लागे, पीसा माने पैसा लगता है, पैसा पैसा कहां से लाऊं, नया कोट बनाऊंगा तो पैसा लगेगा। महाराज जी का मेरे पर असर पड़ा कि जो व्यक्ति पैसे का खूब अच्छा उपयोग करता है उसके मन से पैसे का महत्व निकलता है और अपने भोग में भी पैसे को काम में लाने में वो लेश मात्र भी भाव नहीं रखते। इतना तो सेठ जी के भाई जी के पास था ही ना पैसा कि अपना कोट ही नहीं, ऐसी बात नहीं थी, पर भाई जी के मन में था कि मैं इतने पैसे किसी सेवा में ही लगाऊ ना। ऐसे ऐसे महापुरुष थे। अपने लोगों को कुछ सीखना चाहिए। आपको कोई पैसे फेंकने नहीं, आपको कोई पैसे हर कहीं लगाने नहीं, अपने ही परिवार में उदार भाव से रहो। मुझे कुछ ज्यादा मिल जाए, मुझे मिल जाए, ये भावना न रहे, क्योंकि जो हमको मिलता है वो हमारी भावना से नहीं मिलता, हमारे भाग्य से मिलता है। भाग्य में यदि लिखा हुआ है तो भाई अपने को मिल जाएगा, भाग्य में नहीं लिखा हुआ है तो मिला हुआ भी हमसे हमारे कोई काम नहीं आएगा। मेरे सामने की बात है, एक बहुत अच्छे धनवान आदमी ने महाराज जी से एक प्रश्न किया कि महाराज हम लोग इनकम टैक्स की, सेल टैक्स की चोरी करते हैं तो लाखों रुपया हमारे बसता है और इनकम टैक्स और सेल टैक्स पूरा का पूरा देवें तो लाखों रुपया हमारा खर्च हो जाएगा। अब वो इनकम टैक्स की चोरी करके गलत खाता बही बना करके जो हम पैसा बचाते हैं और जो हमारे पास पैसा आता है हमारे भाग्य का पैसा है या हमारी बेईमानी का पैसा है? महाराज जी ने सीधा कहा कि वो बेईमानी का पैसा है। तो फिर उसने आगे पूछा कि जो भी मिलता है वो भाग्य से मिलता है तो वो पैसा तो भाग्य से मिला हुआ क्यों नहीं मान ले? तो इसका उत्तर इतना बढ़िया दिया, महाराज जी ने कहा कि आप लोग जो टैक्स की चोरी करके या जैसे भी पैसा बचाते, वो पैसा आपके काम नहीं आएगा, और जो चीज आपके पास रहते हुए भी आपके काम नहीं आती है, वो आपके भाग्य की लिखी हुई नहीं है। भाग्य में वही लिखी हुई वस्तु है कि जिसका आप उपयोग करते हो। फिर भागवत का उदाहरण दिया कि यावत ब्रियेत जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम, जितने से हमारा निर्वाह होता है उतनी चीज हमारी है, इससे ज्यादा हमारी है नहीं संसार में। क्योंकि संसार में भगवान ने सबके लिए वस्तु बनाई है। एक छोटा सा उदाहरण है, अपने यहां इतने सत्संगी लोग आए हैं और भोजनालय में भोजन बनता है, तो क्या किसी के भी मन में आता है कि सारा भोजन मेरे लिए बना है? किसी के भी मन में नहीं आती। बल्कि सत्संगी लोग तो यहां तक विचार रखते हैं कि भाई सबको जिमा दो, बाद में बचेगा तो हम जिम लेंगे। भगवान की कृपा है, संतों की कृपा है कि कम नहीं पड़ता, पर भावना कितनी अच्छी रहती है आप लोगों की, पहले इनको और जो आओ भाई जी, आप भोजन करो, आप भोजन करो, आप भोजन करो, भोजन करने के बाद में बच गया तो हम भी कर लेंगे। ऐसे अपने घर गृहस्थ में भी ऐसे ही रहना चाहिए। अपने पास चीज वस्तु सामान रुपया पैसा है, उसका सदुपयोग अपने परिवार में ही लगाओ, उदारता से लगाओ, और इनकी चीज समझ करके इनके लिए लगाओ। बहुत शांति मिलेगी पैसे से। रुचि ज्यादा पैसे की मत आगे बढ़ाओ। जितनी पैसे की रुचि बढ़ेगी, उतनी भगवान की जो लगन है, भगवान की जो रुचि है, वो हमारी दबती चली जाएगी। और भगवान की रुचि नष्ट तो नहीं हो सकती, दब जाएगी, और भगवान की हमें प्राप्ति नहीं होगी। रुपए का नाम अर्थ है, अर्थ। लेकिन संतों ने कहा, भागवत में कहा कि अर्थ तो हम बोलते हैं, इसमें 15 अनर्थ होते हैं, 15 अनर्थ। रुपए के लिए एक ही बात आती है कि साहब रुपए होगा तो वस्तु ले आएंगे बस, और रुपए से क्या हम उपयोग कर सकते हैं? रुपया होगा तो वस्तु ले आएंगे बस, कंबल ले आओ और ले आओ, मकान बना लो, ये बना लो, वो बना लो, वस्तु ले आओ, रुपए, और रुपए का क्या हम कर सकते हैं उपयोग? तो रुपया है वो वस्तु के द्वारा काम आता है, स्वयं काम नहीं आता है। इसलिए रुपए से वस्तु है ये बड़ी चीज होती है, रुपया छोटा है। अब देखो, हम लोग रोटी खाते हैं, साग है, दाल है, चावल है, रोटी है, खाते हैं, ये हमारे शरीर के साथ सीधा संबंध रखती है। और रुपया हमारे पास है, उसका हमसे सीधा संबंध नहीं है। वस्तु में कपड़ा आया, कपड़ा हमारे सीधा संबंध है, कपड़े से कपड़ा पहनते हैं, सर्दी रुकती है, मकान बनाते हैं, मकान में रहते हैं, गाड़ी में बैठते हैं, ये सीधी संबंध आती है, वस्तु का सीधा संबंध है, रुपए का सीधा संबंध नहीं है। इसलिए रुपया महत्व का नहीं है, वस्तु महत्व की है, और वस्तु से ज्यादा मनुष्य का महत्व है। वस्तु आपके पास है लेकिन उसका कोई उपयोग करने वाला नहीं हो तो क्या काम का? कई कई धनी आदमियों के लड़के मर गए, दो लड़के दोनों ही मर गए, और वो धनी आदमी छाती पीट के रोता है कि मेरा धन क्या काम का, मेरे दो लड़के थे, दोनों ही मर गए, किसके काम का धन। ऐसे ही जब वस्तु है, ये व्यक्ति है तो काम आने वाली है, व्यक्ति नहीं है तो वस्तु का कोई उपयोग नहीं होगा। अब बताओ कितना भोजन का भंडार, कितनी बड़ी मात्रा में दाल साग चावल ये बनता है, पर आप हम सभी कोई भोजन नहीं करें तो सब रोटियां सब चावल सब साग दाल सब बेकार हो जाएगा, कौन खाएगा। तो वस्तु से बड़ा व्यक्ति हुआ। वो व्यक्ति पैसे के लिए आपस में मनमुटाव कर लें, राग द्वेष बढ़ा लें और उसके लिए तरह तरह के छल कपट करें, ये बुद्धिमानी नहीं है। जिसमें सत्संगी लोग हैं उनका सोचने का धरातल तो और ऊंचा होता है। देखो जिस आदमी के पास जितना पैसा कम है ना उसके आफत कम है, और जिसके पास ज्यादा पैसा है उसके आफत ज्यादा है। परंतु संस्कृत में आता है वादी भद्रम न पश्यति, जो दुराग्रही होता है वो अच्छी चीज उसके ध्यान में आती नहीं है। दुराग्रह बैठ गया है, पैसा होना ही चाहिए, दुराग्रह बैठ गया, उसको अच्छी चीज मालूम नहीं देती। अपने यहां गीता भवन में आज कितनी बढ़िया सूचना दी कि भाई जो वानप्रस्थि जीवन में शांति प्राप्त करने के लिए भजन करने, केवल भजन करना हो, उसके लिए यदि कोई यहां रहते हो तो उनके लागत मूल्य में भाई भोजन की व्यवस्था है। भजन करो और अपना भोजन करो, भोजन भी मिलेगा और भजन करने की बढ़िया जगह। घर में कितनी राग द्वेष की पंचायती से यदि आप घबरा गए हो और उम्र आपकी 60 वर्ष से ज्यादा हो गई हो और आपको ये प्रपंच नहीं सुहाता हो, तो भाई अपने गीता रामायण माला लेकर के यहाँ इस जंगल में बैठ करके एकांत में खूब नाम जप करना चाहिए। ये पैदावार, ये फैक्ट्री, ये धन कमाना चाहिए। नाम धन ऐसा रे भाई, ये नाम धन ऐसा है कि जितना हम इसमें से ले लेंगे उतना लेने से बढ़ता है। संसार में ये रुपया पैसा जितना लेते हैं उतने हम दरिद्री होते हैं, डूब जाते हैं। बड़ा अच्छा मौका है ये, कितना अच्छा भाव है यहाँ के संचालकों का, कितनी गहरी सूझ हुई कि भाई वृद्ध हो गए और घर में भजन करने का पूरा साधन मिलता नहीं है तो वे बूढ़े सज्जन आकर के यहां भजन करें, जीवन यापन के लिए नहीं भजन करने के लिए यहां आए, भजन करें और भाई भोजन का खर्चा है वो खर्चा दे दिया, क्योंकि फोगट में तो आप लोग खाना नहीं चाहते, वैश्य लोग हो, आपके खुद के ही मन में नहीं जस्ती। इसलिए यहां के संचालकों ने ये बहुत अच्छा निर्णय किया कि भजन करने के लिए यदि कोई रहते हो और एकांत ये जगह है, यहां पर बैठ करके भजन किया जाए। ऐसा जो भाव रख करके व्यवस्था करते हैं ये उनका कोई मामूली उद्योग नहीं है, बहुत बड़ा भारी उद्योग है और इससे बहुत बड़ा सृष्टि में लाभ पहुंचता है। देखो बेचारे व्यवस्था वो करेंगे आपकी, आटा वो लाएंगे, ज्वारी लाएंगे, पिसाएंगे, पाचक को रखेंगे, बनाएंगे, चावल दाल सब इकट्ठा करेंगे, आपको तो केवल लागत मूल्य का पैसा देना है। पैसे का इसलिए रखा कि भाई उन लोगों को ग्लानी न हो कि हम यहाँ पर टुकड़े खाने के लिए थोड़ी बैठे हैं, ऐसी ग्लानी न हो इसलिए कह दिया भी लागत मूल्य का पैसा हम ले लेंगे और भजन किया जाए। वो जो पैसा आपका लगेगा भजन साधन करते हुए अपने में, वो पैसा बहुत अच्छे काम में खर्च हुआ है, किसी दूसरे पर आपने खर्च नहीं किया, आपने अपने पर ही किया लेकिन अच्छे काम में खर्च किया। एक ध्रुव बिगड़ी सुधरे नहीं कोटि करो उपाय। यदि मूल में अच्छाई आ जाएगी तो सब चीज में अच्छाई आ जाएगी, और मूल में यदि गड़बड़ है तो सब जगह गड़बड़ी गड़बड़ हो जाएगा। तो हमारा खास उद्देश्य है, जितना जीवन चला गया भाई उतना तो वापस समय आने वाला नहीं। 60 वर्ष के जो हो गए अब 60 वर्ष तो भाई आने के नहीं है, 120 वर्ष तक काम मिलता है, कौन मिलता है? जितना वर्ष जी लिया वो है नहीं। अब जो कुछ संसार में देखना था वो सब देख लिया, अब हमारे क्या बाकी क्या रह गया? अच्छे अच्छे संतों को तो ऐसा मौका मिला नहीं था। महाराज जी बताते थे कि मैं बचपन में सोचता था कि मुझे भजन का कोई बढ़िया स्थान मिले, जगह मिले, वातावरण मिले, तो जैसा मैं चाहता था वैसा मिला नहीं मुझे। बाद में सेठ जी के बाद आने के पास मेरे कुछ दिशा बदली, मिलता नहीं है, अच्छे अच्छे संतों को जगह नहीं मिली ऐसी। अब कितने अच्छे भाव उन महापुरुषों की कृपा से पैदा हुए यहां आप लोगों के ही, क्योंकि गीता भवन तो आप लोगों का है, ये सत्संगियों का है कि यहां सत्संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, नाम जप करो, पारमार्थिक जीवन को लगाने के लिए आपकी सब व्यवस्था करने के लिए यहाँ के संचालक हैं, सब तैयार हैं। क्या मिलेगा भाई वहां? महाराज जी बोलते थे कि देव खीर में हाथ, कड़ा भरा हुआ गरम गरम खीर है उसमें हाथ देव, क्या वो हाथ जलेगा और कुछ नहीं होगा। ऐसे ही संसार के भोग पदार्थ रुपए पैसे धन संपत्ति इज्जत प्रतिष्ठा, ये गरम गरम खीर है, इसमें यदि अपना हाथ डालेंगे तो हाथ जलेंगे, जलने के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला है। स्वभाव को सुधारना चाहिए भाई, स्वभाव यदि नहीं सुधरा तो भजन साधन करने वाले लोगों का दूसरों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? सत्संग का असली प्रचार कौन करता है? सत्संग का असली प्रचार उसका व्यवहार करता है। परिवार में ये लगना चाहिए कि जब से ये लोग ऋषिकेश ये गीता भवन में जाते हैं सत्संग में, मेरा माँ का व्यवहार बदल गया। बहू कहेगी कि सासू का व्यवहार भी बदल गया। भतीजे कहेंगे कि बुआ जी का व्यवहार बदल गया। देवरानी जेठानियों का व्यवहार बदल गया। वो असली प्रचार होगा। अपने को ये बात देखनी है कि निष्पक्ष होकर के मेरे स्वभाव में क्या कमी क्या है। निष्पक्ष होकर देखेंगे कमी का पता चल जाएगा। अपने स्वभाव में कमी है, उस कमी को दूर करना चाहिए। अपने स्वभाव से, अपने व्यवहार से दूसरों के मन में शांति जो है प्रदान करना चाहिए। घर में कोई बात हो जाए जल्दी से जल्दी उस बात को खत्म कर देना, पता ही नहीं चले पास वाले को भी। पड़ोस में यदि कोई दुखी है, कोई पड़ोस में कोई गमी हो गई तो उसकी सहायता की जाए। ऐसे करने से अच्छा व्यवहार होता है। सुख दुख में सम्मिलित होने से हमारे सुख दुख हैं वो समाप्त होते हैं। दूसरों के सुख में सुखी होना और दूसरे के दुख से दुखी होना, इससे बड़ा और कोई मनुष्य के पास में शांति का उपाय है नहीं। दूसरे के दुख से दुखी हो जाओ। भगवान सेना लेकर के पहुंचे लंका पर, चढ़ाई करने वाले थे। भगवान ने अपने मंत्रियों को बुलाकर पूछा, बोलो क्या करें, आ तो गए आप, क्या करना चाहिए? तो जामवंत जी ने कहा कि महाराज, अंगद को भेजना चाहिए। तो अंगद को कहा भगवान ने कि काज हमार तासु हित होई, काम हमारा हो लेकिन रावण का हित हो, ऐसी बात तुमको करनी है। वहां मेरा काम क्यों हो कि धर्मानुकूल काम है मेरा, और उसका हित कैसे हो, सीता जी को लौटाने में और मेरे शरण आने में उसका हित है। भगवान ने कितना मौका दिया है रावण को। विभीषण को भगवान ने लंकेश कह करके राज तिलक दे दिया समुद्र के किनारे इस पार ही, और रावण को पता भी चला कि राम ने लंका का राजा विभीषण को बना दिया है, और विभीषण भगवान के शरण में गया है, और उसके मंत्रियों ने पूर्ण अविश्वास की बातें कही हैं राम से कि महाराज आप कर क्या रहे हो, विभीषण को शरण में ले रहे हो, हमारी सब पोल बता देगा वहां। भगवान ने कहा अपने कोई पोल होगी तो बताएगा, अपने कोई पोल है ही नहीं, और यदि कुछ ये विभीषण गड़बड़ करेगा तो लक्ष्मण सलट लेगा, अपने आप सलट लेगा। शरण में आया इसका मैं त्याग कैसे करूं, और इससे बड़ा मेरे पास शरणागति का दुनिया भर में आगे उदाहरण मिलने वाला नहीं है कि जिस रावण पर मैं चढ़ाई कर रहा हूं उसी का छोटा भाई मेरे शरण में आ रहा है। यदि आज इसको मैं शरण में ले लूंगा तो सारी दुनिया के मन में एक विश्वास हो जाएगा कि भाई भगवान शरण में लेते हैं, शरण में लेते समय भगवान किसी के अवगुण नहीं देखते। कितना ही उनको अवगुण याद दिलाओ, भगवान को कोई वो बात जस्ती नहीं है। सुग्रीव ने कहा महाराज कर क्या रहे हो, एक ने कहा कि महाराज आप इस विभीषण की शरणागति को इतना महत्व देते हो, यदि ये विभीषण वास्तव में ही सीता जी के चुराने का दुख का अनुभव किया होता तो जिस दिन सीता को लेकर के गया उसी दिन रावण से खटपट करके आपके पास क्यों नहीं आया, मारे मारे ढूंढ रहे थे आप कहां सीता है कहां सीता है, यह उसी समय आ जाते, सीता से पूछ लेते कि सीते तुम्हारे राम कहाँ है, कि वो बता देती कि पंचवटी में छोड़ के आया हूं आई हूं, और वो पंचवटी में आता आपसे मिलता और बोलता कि रावण का भाई हूं, रावण ने अन्याय किया, मैं अन्याय के पक्ष में नहीं हूं, और सीता है वो लंका के अंदर है, क्यों आपको बंदरों की सेना लेनी पड़ी, क्यों हनुमान जी को भेजना पड़ा। लेकिन जब आपने इतनी बड़ी सेना बना ली, जब आपने विराद को मार दिया, जब आपने बाली को मार दिया, और संसार भर के बंदर आपके सेना में आ गए, ऐसे समय में विभीषण उनका त्याग करके आपके पास आता है तो कि ये शरणागति है कि चालाकी है, सेना में विद्रोह करा देगा, ये आपके सामने कोई बात कहेगा और सेना में जाकर और बात कहेगा, क्योंकि ये किष्किंधा की सेना रावण से अपरिचित नहीं है और रावण भी किष्किंधा से अपरिचित नहीं है। कई बार आया गया है, बाली के पास में आया गया है ये। तो किस समय में किस सेनापति से किस सेना की टुकड़ी से अपने विरोध में कुछ काम करवा दे, ये आपको विचार करना चाहिए। और शरणागति के लिए वो पूछ रहा है कि मैं आपकी शरण में आऊं क्या? इसलिए महाराज इसकी बातों में गड़बड़पना लगता है। भगवान ने बहुत कहा, सखा नीति तुम नीक बिचारी। भाई बात तो तुम्हारी बहुत अच्छी है पर ममपन शरणागत भयारी। मेरा प्रण है कि शरणागत के भय को दूर करूं। अब शरण में आ गया, अब कैसे आया हो ये, मैंने तो स्वीकार कर लिया। तो भाई अपने लोग कोई रावण के भाई तो है नहीं, अपने कोई राम जी के अनिष्ट करने वाले से संबंध रखने वाले नहीं, अपने तो जन्म जन्मांतर से भोगों में लग गए, राम जी से विमुख हो गए। यही तो बात हुई अपने से। भगवान से कह दें कि हे भगवान, अब हमारी तो नैया भंवर में फंस गई है, 60 वर्ष से ज्यादा उम्र आ गई, भजन साधन हुआ नहीं। हे भगवान, अब तो हम आपकी शरण में, बचाओ नाथ, हमको बचाओ। जैसा भी हूं मैं महाराज, अब आपका हूं। चौको बुरो कुटिलो रो कामी, जो कुछ हूं सो थारो, नाथ में थारो जी थारो। ये मन के अंदर भाव पैदा होकर के भगवान से कहना चाहिए। देखो ये समय निकल जाएगा, कब मानव शरीर मिलेगा, कब सत्संग मिलेगा, कहां जन्म लेंगे, क्या हमारी आगे दशा होगी। हमारे शास्त्र बोलते हैं कि भयम् पश्य, भय को देखो आगे। मौत के बाद बड़ा भारी भय है, कोई सहायता करने वाला नहीं। जिनके लिए धन कमाते हैं वो कोई सहायता नहीं करेगा। जिनके लिए धन कमाते हैं वही हमारे लिए अगले जन्म में दुख के कारण भी बन सकते हैं। बड़े मन लगा करके हमने मकान बनाया और उसमें मक्खी मच्छर बन करके हम आ गए, मकान में आ सकती रहेगी तो मकान का कीड़ा बन सकते हैं, मकान में चूहा बन सकते हैं, मकान में कीड़ा मकोड़ा बन सकते हैं। और वही हमारा लड़का और हमारा पोता DDT पाउडर छिड़कवाएगा, मारो इनको साहब, मक्खी मच्छरों को मारो। तो जिनको हमने पैसा कमा कमा के दिया वो DDT पाउडर छिड़का छिड़का करके मारेंगे अपने को। क्या ये भय की बात नहीं है? बहुत बड़ा भय। इसलिए आगे को देखना चाहिए, आगे की देखने की बात केवल मनुष्य में ही है और किसी में नहीं है। और तो सब अभी अभी का देखते हैं। इसलिए मानव शरीर मिला है और अपने लोगों को सत्संग मिला है, इसका उपयोग अपने लोग कर लो। और ऐसा बढ़िया एकांत स्थान मिला है, अड़ोस पड़ोस में कोई किलोमीटरों तक कोई नहीं है, आनंद से बैठ करके भगवान का भजन किया जाए। जंगल की हवा भी बड़ी अच्छी है। एक व्यक्ति ने महाराज जी से कहा कि महाराज जी, मैं आपके साथ साथ में घूमना चाहता हूं। कि क्यों? कि भजन करने के लिए। तो महाराज जी ने कहा कि भजन करना हो तो एक जगह बैठ जाओ, मेरे साथ घूमने से भजन नहीं होगा, बाधा पड़ेगी भजन में। यदि तुमको भजन करना है, तुम्हारे मन में कैसे आएगी कि आपके साथ साथ घूमू? भजन का तो बहाना लिया है, साथ में तफरी करने तुम्हारे मन में है। हमारे सामने कहा महाराज जी ने, तो ये बहुत अच्छी जगह है भाई, भजन साधन करने की जगह है। जीवन को शांति में समापन करो, जीवन में शांति के साथ जीवन हमारा समाप्त हो, प्रभु स्मरण में अब हमारा जीवन लगे। इससे बढ़कर और कोई हमारा दूसरा जरूरी काम नहीं है। उस जरूरी काम को करने के लिए जो साधन मिलता है उसका अच्छे से अच्छा सदुपयोग किया जाए और अपना जीवन परमात्मा में लगाया जाए। राम
जय सीताराम, सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम सीताराम।